मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 25 नवंबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह हम लोग भय पर बात कर रहे थे और बहुत विस्तार के साथ हम लोगों ने इस विषय पर बातें की हैं, और पिछले सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि शुक्रवार से हम लोग भय के कुछ कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उससे एक दिन पहले भी हमने भय का जो काल्पनिक कारण है उसके विस्तार के साथ चर्चा की थी। दोस्तों, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक दो जो और कारण होते हैं जो किसी भी मायने में कम इंपॉर्टेंट नहीं है उन पर बात करने जा रहा हूं। अब देखिए कि जब हम किसी भी चीज से भयभीत होते हैं तो उसके दो पक्ष हैं। पहला तो वह चीज, वह घटना, वह वस्तु जो हमें भयभीत कर रही है। डेफिनेटली कुछ चीजें तो ऐसी होती ही हैं जिनसे हर कोई भयभीत होता है, जिसके बारे में मैंने कहा तूफान आ रहा है, दावानल आ रहा है, जो ज्वालामुखी वो आ गया है, तो डेफिनेटली हम सब भयभीत होंगे। तो यहां जो भय है उस वस्तु में है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे भय होते हैं सच पूछिए तो वो हम में ही होते हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, हम में कहां कहां भय होते हैं इसके भी कुछ दो बिंदुओं को हम देख चुके हैं। आज मैं एक दो बिंदुओं पर और चर्चा करने जा रहा हूं और शुरुआत में इसकी कर रहा हूं अपनी कमजोरी से। यानी कि जब हम किसी चीज से भयभीत होते हैं, किसी घटना से हमें भय लगता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरी भी काम कर रही होती है। देखिए, जब मैं कमजोरी की बात कर रहा हूं तो जैसे अज्ञानता, मान लीजिए कि आपको एग्जाम से डर लग रहा है तो अज्ञानता ही आपको कमजोर बना रही है। तो यहां आप अज्ञानता को भी आप अपनी कमजोरी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि कमजोरी के भी फिर कुछ कारण होंगे कि हम कमजोर क्यों हैं। कहीं हम मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, कहीं हम आत्मिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, कहीं हम शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। तो कमजोरी के तो अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन दरअसल होता यह है कि यदि हम में वीकनेस है, कमजोरी है किसी चीज को लेकर के, तो डेफिनेटली हम भयभीत होंगे। बल्कि आप इस कमजोरी को कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंधों से भी जोड़कर देख सकते हैं। परिवार के हमारे जो अपने सदस्य होते हैं उनके प्रति हमारे मन में एक मोह का भाव होता है, और आप देखिए कि हम अपने परिवार के सदस्यों के सुख और हित के लिए जितने अधिक आशंकित रहते हैं, चिंतित रहते हैं और कभी कभी भयभीत भी हो जाते हैं, वह दूसरों के लिए नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो मोह का धागा है उसने हमें कहीं ना कहीं कमजोर बना दिया है। तो मित्रों, ये जो हमारी अपनी कमजोरी होती है यह भी डर का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और एक बात मैं यहां आप सबसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, और वो ये कि जिस तरह से हमारा पालन पोषण होता है, इनफैक्ट सच पूछिए तो वो पालन पोषण के समय की कुछ ऐसी कमजोरियां हमारे अंदर गहरे बैठ चुकी होती हैं कि अब कमजोर दिखाई देने का या होने का कोई कारण हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में वो बात इतनी गहरी बैठ चुकी होती है कि वो कहीं ना कहीं हमें कमजोर बना देती है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने विषय के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, बहुत अच्छे अपने विषय को जानते हैं, लेकिन आप अपनी भाषा में जानते हैं, हिंदी में जानते हैं, उड़िया में जानते हैं, तमिल में जानते हैं, अंग्रेजी आपको उतनी अच्छी नहीं आती। तो अब आप देखिए कि जैसे ही कोई अंग्रेजी बोलने वाला आएगा, या आप ऐसे कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं जहां अंग्रेजी में ही सारी बातें हो रही हैं और आपको इस बात की अनुमति दी गई है कि आप अपनी बात हिंदी में या जिस भाषा में भी आप चाहें रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह बात कमजोर बना देगी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब इसके लिए आप उतने दोषी नहीं हैं, आपकी परवरिश ऐसी हुई, आपके परिवार का माहौल ऐसा था, एजुकेशन सिस्टम ऐसा था, लेकिन हम कहीं ना कहीं कमजोर बन गए हैं। जो बच्चे गांव में पले बढ़े होते हैं उनमें मैंने देखा है कि एक बहुत जबरदस्त किस्म की हिचकिचाहट होती है, चाहे वो मंच पर जाकर बोलने की हिचकिचाहट हो, चाहे क्लास में प्रश्न पूछने की हिचकिचाहट हो, चाहे बड़े बड़े होटलों में जाने की हिचकिचाहट हो, और अगर वो हिम्मत करके चले भी जाएंगे तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मन में एक विचित्र किस्म का भाव उठता गिरता रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई हमें देख तो नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये जो कमजोरी है कभी कभी तो हमारे वातावरण से ही हमें मिल जाती है, और कभी कभी हम इसके लिए खुद भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे ज्ञान से संबंधित कमजोरी। और सच पूछिए तो मुझे एक बात और भी महत्वपूर्ण लगती है यहां कि जब हम विधि के प्रतिकूल, यानी कि जो नियम हैं, जो कानून हैं, उनके खिलाफ जाकर जब कुछ काम करते हैं तो वह भी कहीं ना कहीं हमें कमजोर बना देती है और जबरदस्त रूप से कमजोर बना देती है। उदाहरण के तौर पर आइए एक थोड़ा सा एक उल्टा सा ही उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप भीड़ भरे बाजार में घूम रहे हैं, आपके सामने एक व्यक्ति जा रहा है और आप देख रहे हैं कि उसका पर्स काफी कुछ निकला हुआ है, पॉकेट से, पैंट के पॉकेट से काफी कुछ पर्स गिरने को है। आप सोचते हैं यार अच्छा मौका है, उसके पर्स को निकाला जा सकता है, भीड़ में उसे पता भी नहीं चलेगा, और आप धीरे से उसका पर्स निकाल लेते हैं, राइट। अब आप देखिए कि पर्स निकालने से पहले और अब आप जो जबकि पर्स निकाल चुके हैं, अब आपकी मानसिकता क्या हो गई है? आपको चारों तरफ ऐसा लगेगा जैसे कि पुलिस वाला आ रहे हैं या वही आदमी आ रहा है, किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। आपका पूरा जो मानस जगत है वो बिल्कुल असंतुलित हो जाएगा, आप भयभीत हो जाएंगे। कहां तो आप उस बाजार में एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे निश्चिंतता के साथ, लेकिन इस गलत काम ने आपको कमजोर बना दिया है। और ये तो मैं इस छोटे से गलत काम की बात कर रहा हूं, जो कानून के विरुद्ध काम करते हैं वो भी बकायदे कहीं ना कहीं डरे हुए ही अंदर से रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़ लिए जाएं, हम कोई जान न जाए, हमारी इज्जत कहीं खाक में न मिल जाए। इस तरह की बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, भले ही वह इसे बाहर दिखा न रहे हों। तो दोस्तों, ये जो कमजोरी है इसे आप अपनी कमी से भी जोड़कर देख सकते हैं, इसे आप अपने अभाव से जोड़ करके देख सकते हैं। ये सारे के सारे हमें कमजोर बनाते हैं, कानून के विरुद्ध जब हम काम करते हैं तब भी हम कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। मित्रों, दो तत्व और हैं, एक होता है साहस और दूसरा होता है विश्वास। कि हम में साहस कितना है, हम कितने करेजियस हैं। जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतया उनसे भी नहीं डरते जिनसे दूसरे लोग डर रहे होते हैं, हालांकि इनका यह साहस कहीं ना कहीं दुस्साहस तक चला जाता है। और कुछ सीमा तक तो यह दुस्साहस ठीक है, लेकिन अगर एक सीमा को पार कर जाता है तो मुझे लगता है कि वह बात फिर खतरनाक हो जाती है। विश्वास के बारे में मैं आपको दो कथाएं सुनाना चाहूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 2-3 साल का, और अपने पिता की उंगली पकड़ करके चल रहा है और जंगल में शेर दहाड़ रहा है। अब आप देखिए कि उस शेर की दहाड़ को सुनकर के, अब ये दो है, पिता है और उसका पुत्र है जो 2-3 साल का है, इन दोनों की क्या स्थिति होगी? पिता को डर लग रहा है कि बाप रे शेर दहाड़ रहा है, कहीं वो इधर ना आ जाए, या जंगल में वैसे भी उसे डर लग रहा है, लेकिन बच्चे को नहीं लग रहा है। बच्चे को क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए नहीं कि वो अज्ञान है, बच्चे को इसलिए भी डर नहीं लग रहा है, यहां अज्ञानता तो है ही, लेकिन चलिए अगर पिता कह भी दे कि देखो शेर दहाड़ रहा है और शेर बड़ा खतरनाक जानवर होता है, तब भी बच्चे को डर नहीं लगेगा। इसलिए डर नहीं लगेगा क्योंकि उसने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी है। उसको इस बात का भरोसा है कि नहीं, शेर आ भी जाएगा तो मेरे पिता मुझे संभाल लेंगे, मुझे डरने की कोई जरूरत यहां नहीं है। तो उसके अंदर एक अलग ही तरह का विश्वास का भाव पैदा हो गया है। दोस्तों, यह विश्वास का भाव यहां उसके अंदर पिता के कारण पैदा हुआ है। कुछ लोग और दूसरी वजहों से विश्वास अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, और मैं समझता हूं कि जो ईश्वर हमारे लिए सबसे ज्यादा जो उपयोगी हो सकता है, हमारी जो ताकत बन सकता है, वो केवल हमारी इसी विश्वास और आस्था के आधार पर। तो दोस्तों, दूसरी कथा मैं नहीं सुना पा रहा हूं, समय कम है और कथा थोड़ी सी लंबी है, लेकिन उसका भी संबंध लगभग इसी से ही है। तो मुझे लगता है कि भय पर हम लोग काफी विस्तार से बात कर चुके हैं, और अब चाहिए कि इस विषय को हम लोग यहीं समाप्त करके नए विषय की ओर बढ़ें। तो दोस्तों, इस विषय को अब यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।